आरव दुबई से वापस आ चुका था। वो गौरवी जी और कबीर के साथ डिनर कर रहा था, जहां बातों बातों में उसके मुंह से आयु का नाम निकल गया। आरव के मुंह से आयु का नाम सुनकर गौरवी जी और कबीर उसे परेशान करने लगे। कबीर ने गौरवी जी की तरफ देखकर कहा, कुछ समझ आ रहा है दादी आपको? मतलब इतने दिनों में इन्हें आपसे ज्यादा उस डॉक्टर की याद आई? हाँ, लग तो यही रहा है, लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रही हूँ, गौरवी जी ने कहा। जिसके साथ रहकर आया है वो पसंद है या जिसे याद किया उसे चाहता है? फिर वो आरव की तरफ देखकर बोली, तुम खुद ही सोच लो ताकि उस हिसाब से मैं भी आगे के डिसीजन लूँ। अब मुझे और वेट नहीं करना। इतने सालों में पहली बार तुम किसी लड़की को लेकर सीरियस हुए हो। मुझे जल्द से जल्द आयु इस घर में अपनी बहू के तौर पर चाहिए। हाँ, तो आप भी किसे पूछ रही हैं दादी? मैं बात करके उसके पेरेंट्स का एड्रेस ले लेता हूँ, फिर हम चलते हैं उनके घर पर रिश्ता लेकर, कबीर ने सुझाव दिया। उन दोनों की बातों से चिढ़कर आरव ने अपने खाने की प्लेट उठाई और वहां से जाते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रही आप लोगों को? अभी तक तो ठीक से मैंने उसे जाना तक नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो मुझे अभी पसंद नहीं करती है। जबरदस्ती तो उसके साथ शादी नहीं कर सकता ना। अपनी बात कहकर आरव वहां से चला गया। वहीं उसकी बातों का गौरवी जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कबीर से कहा, इसकी बातों को जाने दे। अरे, अरेंज मैरिज नाम की भी चीज़ होती है, तुम उसके घर वालों का पता लगाओ, हम चलते हैं बात करने। ओके दादी, कबीर ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा। डिनर होने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह आरव जल्दी उठा और तैयार होने के बाद सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पर था। वहां भी उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया क्योंकि उसे आयु से मिलने की जल्दी थी। ब्रेकफास्ट होते ही आरव ने कबीर से कहा, तुम देख लेना, मैं लंच तक ऑफिस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, कहीं तुम्हारी डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़कर निकल ना ले, गौरवी जी ने आरव को परेशान करने के लिए कहा। कबीर ने भी उनका साथ देते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, इतने दिनों तक मैंने सब कुछ अकेले ही तो संभाला है, आज के दिन और सही, आप चाहो तो पूरा दिन ले सकते हो। आप दोनों से बात करना ही बेकार है, आरव ने सिर हिलाकर कहा और वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही गौरवी जी और कबीर ने आपस में हाईफाई की और जोर से हंसे। आयु से मिलने की जल्दी में आरव काफी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। उसे पता था कि आयु इस वक्त कहाँ हो सकती है, इसलिए उसकी गाड़ी सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ की जा रही थी। पता नहीं तुमने मुझे याद किया होगा या नहीं, लेकिन इस डेढ़ महीने में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। फाइनली आज तुम्हारा चेहरा देखने को मिलेगा। मैंने तुम्हारी छोटी सी नाक पर उस बड़े से गुस्से को बहुत मिस किया। ये हॉस्पिटल कब आएगा? आरव ने खुद से बड़बड़ाकर कहा। ट्रैफिक से बचने के लिए उसने दूसरा रास्ता लिया ताकि उसका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। रास्ता थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन लगभग 11 बजे के करीब आरव हॉस्पिटल में था। वो ज्यादातर अयान के साथ ही होती है, अब भी वहीं पर होगी, नहीं भी हुई तो अयान से पूछ लूंगा। खुद से बातें करते हुए आरव अयान के केबिन में पहुंचा। अयान किसी केस फाइल का काम कर रहा था। आरव को देखते ही वो सरप्राइज हुआ। उसने कहा, आप इतनी सुबह हॉस्पिटल आए हो, आप ठीक तो हो ना? आरव अयान के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ आयु से मिलने आया था। कहाँ है वो? उसे छोड़िए, आप बताइए कि आप इतने दिनों से कहाँ गायब थे, अयान ने पूछा। उसने काफी दिनों बाद आरव को देखा था। मैं आउट ऑफ इंडिया था, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकता। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ आयु कहाँ है, आरव ने चिढ़कर कहा। आरव की बेचैनी देखकर अयान के फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, वेल, काफी दिनों बाद आए हो इसलिए आपको नहीं पता, उसके एग्जाम चल रहे हैं इसलिए वो पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रही है। आयु के वहां न होने से आरव का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से कहा, क्या वो यहाँ नहीं है और मैं उससे मिलने के लिए इतनी दूर आया हूँ? जल्दी से उसके घर का एड्रेस दो, मुझे उससे मिलने जाना है। घर का एड्रेस लेकर कोई फायदा नहीं है, इस वक्त वह एग्जामिनेशन हॉल में होगी, 3 बजे से पहले आप उससे नहीं मिल सकते, अयान ने बताया। हद है यार, एक और दिन उसके बिना रहना होगा, ये मुझसे नहीं होगा, आरव ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। फिर वो अयान से बोला, तो मुझे उसके मेडिकल कॉलेज का एड्रेस दो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। एज योर विश, अयान ने कंधे उचकाकर जवाब दिया और फिर आयु के मेडिकल कॉलेज का एड्रेस आरव को दे दिया। एड्रेस मिलते ही आरव तुरंत वहां से चला गया। वहीं उसके जाते अयान ने आईज रोल करके कहा, एटलीस्ट थैंक्स तो बोल ही सकते थे, कितना एक्साइटेड हो रहे हैं, छिपकली से मिलने के बाद इनकी सारी एक्साइटमेंट फुरमने वाली है। अयान वापस अपने कामों में लग गया। उससे एड्रेस लेने के बाद आरव सीधे आयु के मेडिकल कॉलेज पहुंचा। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहीं पर रोक लिया, लेकिन फिर वहां के डीन से बात करने के बाद आरव को अंदर जाने दिया गया। आरव डीन के ऑफिस में बैठा बार बार घड़ी देख रहा था। फिर वो परेशान स्वर में डीन से बोला, क्या ये एग्जाम थोड़ी देर पहले खत्म नहीं हो सकता? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, एग्जाम कभी बीच में थोड़ी ना खत्म होता है, डीन ने सिर हिलाकर कहा। तो आप कुछ देर के लिए उसे बाहर बुला दीजिए, आरव ने कहा। डीन ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, यह भी पॉसिबल नहीं है, मैं अंदर जाकर बैठ जाऊं, आरव बोला। जवाब में डीन ने बिना कुछ कहे नामे सिर हिला दिया। आरव ने आयु से मिले बिना 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त बिताया था, वहीं अब कुछ चंद घंटे उस पर भारी पड़ रहे थे। मजबूरन उसे आयु का वेट करना ही पड़ा। तीन बजते ही जब एग्जाम होने की बेल बजी तब आरव के बेचैन चेहरे पर राहत भरी मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से दौड़कर बाहर गया। उसकी इतनी बेताबी देखकर कॉलेज डीन भी हैरान था। उसने कहा, अजीब है, इतना बड़ा आदमी एक मामूली सी डॉक्टर के पीछे इस हद तक दीवाना है। इसका बस चलता तो उसके पास जाकर बैठ जाता। वहीं आरव कॉलेज के पोर्च में था। वहां के काफी स्टूडेंट्स उसे पहचानते थे, खासकर लड़कियां। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े होने और ज्यादातर लाइमलाइट में रहने की वजह से मुंबई में आरव खुराना का नाम काफी फेमस था। जैसे ही आरव ने आयु को बाहर निकलते देखा, वो दौड़कर उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी इस हरकत पर आयु हैरान थी। आसपास के कुछ स्टूडेंट्स रुककर उन्हें देखने लगे। इन सबसे बेखबर आरव तो बस आयु में खोया था। उसने धीमी आवाज में कहा, आई मिस्ड यू सो मच। क्या कर रहे हो आरव? सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे वरना मैं दम घुटने से मर जाऊंगी, आयु कसमसाते हुए बोली। आयु आरव से दूर होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव ने उसे कसकर गले लगा रखा था। उसे वहां किसी की परवाह नहीं थी। आयु की बात के जवाब में आरव ने कहा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को बस बातें बनाने आती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मैंने तुमसे मिलने के लिए कितना वेट किया है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो छोड़ो तुम, मुझे सांस नहीं आ रही है आरव, आयु ने तभी आवाज में कहा। उसके ऐसा कहते ही आरव ने उसे छोड़ दिया। आयु से अलग होते ही आरव उसे एकटक देख रहा था। आयु ने लैवेंडर कलर का जंपसूट पहना था और उस पर डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था। आरव ने आयु को देखकर स्माइल करते हुए उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, एज यूजुअल क्यूट लग रही हो। फिर उसने आयु का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए कहा, चलो यहां से चलते हैं, आराम से बैठकर बात करेंगे, कितना टाइम हो गया तुम्हें देखे बिना।
आरव ने आयु को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगा। आयु ने नोटिस किया सब उन दोनों को ही देख रहे हैं। इससे आयु थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। आयु ने आरव के साथ चलते हुए धीमी आवाज में कहा, आरव मेरा हाथ छोड़ो, लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। कहा ना, आई डोंट केयर, आरव ने लापरवाही से जवाब दिया। बट आई डू आरव, आयु ने हिचकिचाते हुए कहा। आरव ने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा और जवाब में कहा, अब ये हाथ उम्र भर थामने की आदत डाल लो डॉक्टर, मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाला। आरव की बात सुनकर आयु का दिल जोरों से धड़का। वो दोनों आरव की गाड़ी के पास आ चुके थे। आरव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आयु को अंदर बिठाया। उसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर था। अगले ही पल सब कुछ याद आते ही आयु के चेहरे पर गुस्सा था। तुम मुझसे इतनी अजीब तरीके से बात क्यों कर रहे हो? हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है और इसे क्रिएट करने की कोशिश भी मत करो, आयु ने गुस्से में कहा। मैंने तुम्हारे इसी गुस्से को बहुत मिस किया है, तुम यकीन नहीं मानोगी मैंने तुम्हारे बिना 1.5 महीने कैसे बिताए हैं। अब तुम गुस्सा करो या कुछ भी, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद यू, और हम किसी अच्छी जगह जा रहे हैं, और डोंट वरी, तुम्हारे सो कॉल लोग वहां देखने के लिए नहीं होंगे। बोलते हुए आरव ने गाड़ी स्टार्ट की और आयु को ले जाने लगा। आयु आरव को रोकना चाहती थी, पर न जाने क्यों उसका दिल इसकी गवाही नहीं दे रहा था, जैसे वो खुद आरव के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। दूसरी तरफ छवि सिंघानिया अपने मैनेजर राहुल के साथ सिंघानिया एम्पायर के ऑफिस में थी। वो दोनों वहां किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आरव वापस मुंबई आ गया है, उसके पीछे से हमने जो प्लानिंग की है उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, छवि बोली। हाँ मैम, सब रेडी है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई, आप उसका काम देखेंगी तो बहुत खुश होगी, राहुल ने जवाब दिया। सो तो है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक बार फिर कोई ऐसी लड़की जो आरव के करीब होगी और वो उसका दिल तोड़ेगी, तब उसे कैसा महसूस होगा। पिछली बार उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। पिछली बार माहिरा उसके साथ थी, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं होगी। देखना, मैं उसे इस बार इमोशनली पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी, छवि ने ईविल स्माइल करके कहा। राहुल और छवि आपस में बात कर रहे थे, तभी राहुल के पास एक मैसेज आया और उसने मुस्कुराकर कहा, मैम वो आ गई है। इसी के साथ छवि सिंघानिया के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी ईविल स्माइल थी। आरव के दुबई होने का उसने भरपूर फायदा उठाया था और अब उसने जो भी तैयारी की थी उसे अंजाम देने का वक्त आ गया था।